नाम विदर्भाधिपतिर्महान्तस्य पञ्चाभवन् पुत्रः कन्यैका च वरानना। एक थे राजा, उनका नाम है राजा भीष्मक। विदर्भ के राजा थे वे, 5000 वर्ष पूर्व की बात है। तस्य पंचाभवन पुत्र, 5 पुत्र थे राजा भीष्मक के। कन्यका च वरानना, वर आनना, सुंदर मुखमंडल वाली एक पुत्री भी थी उनकी। 5 पुत्र थे, रुक्म अग्रजा, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, उनके 5 नाम हुए। और पुत्री रुक्मिणी है। रुक्मिणेशाम स्वसा सती, सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणाश्रियः गुहागतैर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिं। सुदेव गोस्वामी रुक्मिणी का परिचय दे रहे हैं। उपसृत्य मुकुंदस्य, मुकुंद के बारे में खूब सुना करती थी ये रुक्मिणी। मुकुंद का रूप, वीर्य गुण श्रिय, उनका सौंदर्य, उनका वीर्य पराक्रम आदि आदि। जब एक ही बार नहीं, कई बार सुनने का अवसर, सुअवसर प्रदान हुआ था रुक्मिणी को, आगतैर गीयमानास्तम, ऋषि मुनि परिव्राजकाचार्य, अरे वे द्वारका से आते थे, कुंडीनपुर की बात है, विदर्भ में। विदर्भ जानते आप लोग, हाँ कि ना? नहीं, कभी नहीं सुना नाम। या तो विदर्भ राज्य बनाने की बातें हो रही है। विदर्भ क्या? नागपुर है, जहां अमरावती है, जहां खानदेश, ये कई सारे जिले हैं, वो प्रदेश विदर्भ आज भी उसी नाम से जाना जाता है। और सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से विदर्भ का नाम निकला है। तो ऋषि मुनि आते थे, महात्मा आते थे, द्वारका से आते थे, द्वारकाधीश की सारी गाथा कथा सुनाते थे राजा भीष्मक को। राजा जब सुनते थे भगवान की गाथा, तो कुछ कम उम्र वाली रुक्मिणी भी वहां बैठे बैठे सुना करती थी भगवान के यशोगान। सुनते सुनते मैंने सदृशम पतिम, उसने तय कर लिया, हरी इसको, तब मैंने सदृशम पतिम, मेरा विवाह अगर होगा तो कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ ही होगा। इतनी आसक्त हुई रुक्मिणी प्रभु से केवल श्रवण मात्र से, कभी नहीं मिली, देखी नहीं थी कभी उस प्रभु को, सुन सुन के उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ और संकल्प हुआ, मैंने सदृशम पति हो तो ऐसा कृष्ण जैसा, ऐसा संकल्प जब रुक्मिणी ने किया है वैसा ही संकल्प अब द्वारका में द्वारकाधीश करेंगे, तो कई सारे तीर्थ यात्री कुंडीनपुर से राजा भीष्म को मिलके और रुक्मिणी को भी देखा करते थे, उसका कितनी बुद्धिमान है, ताम बुद्धि लक्षण औदार्य उदारता रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णस्य सदृशीं भार्याम समद्वोढुं मनोदधे। और वहां द्वारका में भी उन्होंने निश्चय किया, सदृशीं भार्याम, भार्या हो पत्नी हो तो ऐसी रुक्मिणी जैसी, बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगुनीम नृप। पांच बांधों में से, बंधुओं में से चार बंधु तो तैयार थे। हा हा, बहुत सुंदर बात है, हम प्रसन्न हैं इस बात से, हे रुक्मिणी जो तुम श्री कृष्ण का वरण की हो। ततो निवार्य कृष्ण द्विज रुक्मी, लेकिन रुक्मी बड़ा विघ्न था क्योंकि कृष्ण का द्वेष किया करता था, द्वेषी था, और उसने विचार किया, मेरी बहन के लिए वो शिशुपाल है ना, शिशुपाल वो बढ़िया पति होगा। अरे बहु, आपको बात कैसी अच्छी लगी? आपकी ओर से एक ने तो कहा नहीं, आप यहां हो ना सब, तद अवेत्य असिता अपांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम। तो अपने भाई रुक्मी का प्रस्ताव जान के सुन के वैदर्भ भी, विदर्भ की रुक्मिणी, इसीलिए रुक्मिणी का दूसरा नाम है वैदर्भ भी, लॉर्ड हरि बो, लॉर्ड बहुत दुखी हुई, भ्रशम दूर मना, अत्यंत दुखी हुई, विचिन्त्य आप्तम द्विजम कश्चित कृष्णाय प्राहिणोद्रुतम। खूब सोच विचार करके उसने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को द्वारका भेजी, Yeah, Haribol. I don't even need it. It's too much. Yeah. Hare Krishna. तो रुक्मिणी का संदेश लेके ये ब्राह्मण द्वारका पहुंचते हैं. द्वारकां स समभीत्य प्रतिहारै प्रवेशितः द्वारका धाम की. द्वारका में वहां पहुंचे. अब उस प्रासाद महल के समक्ष है. इस प्रासाद में द्वारकाधीश निवास करते हैं. प्रतिहारे द्वारपालों ने द्वारपाल ले गए इस द्विज ब्राह्मण को इस प्रासाद में. अपश्यद् आद्यम पुरुषम आसीनम कांचनासने. अब ब्राह्मण आगे देखते हैं तो सामने ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं. आद्यम पुरुषम कैसे है द्वारकाधीश? आदि पुरुष है. आद्यम पुरुषम आसीनम आदि पुरुष को बैठे हुए देखा. कहाँ बैठे हैं? कांचन आसन में सिंहासन पर बैठे हैं. जो कांचन सोने का और रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है द्वारकाधीश. दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस तम अवरुह्य निजासनात. या द्वारकाधीश श्री कृष्ण को एक उपाधि या नाम दिया जा रहा है. कैसे है? ब्रह्मण्य देव. ब्रह्मण्य देव भगवान जो ब्राह्मणों की उपासना करते हैं. ब्राह्मणों के पूजक उपासक श्री कृष्ण जब देखे कोई द्विज वर ब्राह्मण प्रवेश कर रहे हैं. अवरुह्य उठ के खड़े हुए. निज आसनात उपवेश अर्हं चक्रे यथा आत्मानं दिवौकसः. और उसी आसन पर अपने आसन पर उस द्विज को बिठाए और उस ब्राह्मण की वैसी ही पूजा अर्चना किए जैसे दिवौकसाम स्वर्ग के देवता भगवान की जैसी आराधना पूजा करते वैसे ही प्रभु ने ब्राह्मण की आराधना पूजा की. तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति ही. तो कुछ भोजन आदि की व्यवस्था विश्राम भी हुआ. फिर प्रभु पुनः उस ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं. उनके चरणों की सेवा पाद संवाहन प्रारंभ होता है. संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो एन केनचित. कुशल मंगल तो हो ना. सेवा भी कर रहे हैं पूछताछ भी हो रही है. विप्रान स्व लाभ संतुष्टान साधुन भूत्सुरुत्तमान निरअहंकारिणः शांतान नमस्से शिरसा असकृत. भगवान के ऐसे ब्राह्मणों को आप जैसे ब्राह्मणों को नमस्से मैं नमस्कार करता हूं. शिरसा नमामि असकृत पुनः पुनः मैं मेरा वंदन वंदना नमस्कार। और ब्राह्मणों का कैसे, ब्राह्मणों को भगवान पूजते हैं नमन करते हैं। स्वलाभ संतुष्ट, जो संतुष्ट है यदृच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान ने जो भी व्यवस्था की है सुविधा दी है उसमें संतुष्ट है जो विप्र जो ब्राह्मण। साधुन भूत सुरुत्तमान, और सब जीवों के जो से मित्रता जो रखते हैं ब्राह्मण, निरहंकारिनः, और जिन 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 ब्राह्मणों में अहंकार नहीं है जो नम्र है, विद्या विनय संपन्ने, कैसे विद्या से संपन्न और साथ ही साथ विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण, शांतान, और जो शांत स्वभाव के है, नमस्ते, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में मैं झुकता हूँ प्रभु ब्रह्मण्य देव। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कह रहे हैं, कश्चिद्वा कुशलं ब्रह्मन् राजतो यश्च हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः। और जहां तक ये ब्राह्मण की बात हुई, अब जहां तक राजा की बात है, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे समाज का विभाजन होता है। तब राजा के बारे में, क्षत्रियों के बारे में कहते हैं, कश्चिद्वा कुशलं ब्रह्मन् राजतो यश्च हि, जिस राजा की प्रजा कुशल मंगल रहती है, सुखम वसति विषये, और उस देश में वहां की प्रजा सुखी है, पाल्यमानः, और सुरक्षित है राजा से, राजा रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय क्षत क्षत क्षतात् त्रायते इति क्षत्रिय कहा, क्षत मतलब कोई कोई कष्ट होना या कोई हानि कोई या जख जखम होती है, कोई ऊन ऊन इंग्लिश में कहते हैं, तो ऐसे कष्टों से क्षति से जो रक्षा करता है उस व्यक्ति को राजा या क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय कहते। समय प्रिय, ऐसा राजा मुझे अति प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। यतस्व त्वम आगतो दुर्गम निस्तीर्ये यदिच्छया, ए विप्रवर आप तो बहुत दूर से आए हो, कहा कुंडिनपुर विदर्भ, और कहा हमारा ये द्वारका, बहुत दूर का ये पथ, दुर्गम पथ पर आप चल के ही आए हो। सर्वम नो ब्रूहि गुह्यम चेत किम कार्यम करवामते, अगर आप समझते हो कि आप का संदेश उतना गोपनीय नहीं है, या आप मुझे आप कहना चाहते हो तो कहिए किम कार्य, और आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या आदेश है मेरे लिए, किम कार्यम करवामते करवामते। तो इस प्रकार प्रभु ने जब जिज्ञासा की तो उस विप्रवर ने सर्वम वर्णयत, सब समाचार कहे सुनाया सुनाने लगे। सर्वप्रथम तो हम क्या कर सकते हैं, तो हुआ जिस उद्देश्य से वे आए थे, रुक्मिणी के संदेश वाहक बन के आए थे, तो झट से उन्होंने रुक्मिणी का पत्र, जो पुनः रुक्मिणी अपने अपने हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन, इसको पढ़ के सुनाने लगे ब्राह्मण। रुक्मिण्युवाच, देखो कैसी व्यवस्था है, रुक्मिणी ने लिखा हुआ पत्र आज भी हम पढ़ सकते हैं, कैसा फाइल करके रखा है, महत्वपूर्ण लेटर होगा, पत्र होगा वो। और उन्होंने भी कई पत्र लिखे होंगे 5000 वर्ष, यानी कि रुक्मिणी ही लिखना पढ़ना जानती थी और सारे निरक्षर थे, और लोग भी लिखते थे, लेकिन उन सभी पत्रों में ये पत्र, ये संदेश महत्वपूर्ण, और हमारा भी कुछ कल्याण होगा इस पत्र के संदेश में या वर्णन में। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसको कहे हैं, और श्रील वेद व्यास अपनी श्रीमद् भागवत की रचना में इसको लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्वकर्ण विवरै हरतो अंगतापम्। मैं तो बचपन से ही श्रुत्वा सुन रही हूं गुणान, आपके गुण की गाथा, हे भुवन सुंदर, और कर्ण विवरय, सुनी हुई बातें जब प्रवेश करती है मेरे कर्णों में, वहां से जब हृदय प्रांगण में पहुंचती है, तो एक तो मेरे चित्त को हर लेती है और साथ ही साथ मेरे अंग ताप को भी। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रतम अपत्रपम मे। ऐसे कहते कि मेरा मन आप में के चरणों में आसक्त है, अनुरक्त है, आप में प्रवेश करता है मेरा मन, और ये कहते हुए मुझे ये लज्जा छोड़कर या मेरी लज्जा छूट जाती है। मैं जब आपके संबंध के वचनों को श्रवण करती हूँ और मेरा मन आप में प्रवेश करता है, मैं आपके संबंध की बातें भी कहना प्रारंभ करती हूँ, लज्जा को छोड़ के। कात्वा मुकुंद महत, आप जैसा कौन है इस संसार में, जहां तक कूल की बात है, शील की बात है, सौंदर्य की बात है, विद्या की बात है, और उम्र की बात है, और द्रवीण धन की बात है, आत्मतुल्यम, आप जैसा तो कोई नहीं, आप अतुलनीय हो, अतुल कृष्ण कहते हैं। भगवान के एक नाम क्या है, कैसे कृष्ण, अतुल अतुल अतुलनीय, जिनकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती। मत्तः परतरम न अन्यत, भगवान गीता में मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे बराबर का कोई नहीं है, न तो मुझसे कोई ऊंचा है। सम असमो ऊर्ध्वम, असम भगवान जैसा समकक्ष कोई नहीं, ऊर्ध्वम ऊपर वाला भी कोई नहीं है। तो रुक्मिणी वही बात यहां लिख रही अपने पत्र में, तो आप ही कहिए हे भुवन सुंदर, आप जैसे अतुलनीय, आप अतुल कृष्ण हो। तो धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत, कौन कन्या है जो कुलवती स्वयं हो, और काले उसका समय आ चुका है, विवाह का समय आ चुका है, तो आप जैसे व्यक्ति का वो वरण नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, ऐसी तो कोई स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि आप अतुलनीय हो। और अभिराम अभिरामम आप आनंद देने वाले हो, नयनाभिरामम आंखों को भी आनंद देने वाले हो। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जायात आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। मेरा स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरे द्वारा आप चुने गए हो, मेरा स्वीकार कीजिए। मैंने आपको मन ही मन में समर्पित किया है और देखना कि वो सियार, वो जो शिशुपाल है उसका सियार, वो सियार मुझे स्पर्श ना कर पाए। आगे लिखती है रुक्मिणी, मैंने अगर कोई दान दिया है, मैंने अगर कोई धार्मिक विधि विधानों का पालन किया, कोई व्रत किया है, कोई विप्र गुरुजनों की आराधना पूजा की है, तो ऐसे सारे धार्मिक कृत्यों का फल प्रभु मुझे अब चाहिए। इस सब के बदले में अगर आप मुझे मिल सकते हो तो आप आइए। हे गदाग्रज एत्य, आप आकर पानीम गृह्णातु, पानी ग्रहण करें, मुझे स्वीकार करें पत्नी के रूप में। और न दम घोष सुतादयो अन्य, न कि दम घोष के पुत्र शिशुपाल थे, इनको दूर रखना है आपको। और कहते आपको कब आना होगा, ये नहीं कि अब कुछ वर्षों के बाद की, नहीं, अब दो दिन में मेरा विवाह है। विवाह कब होगा, अब परसों ही, स्व परसों, आपको कल आना है। तो वो कहती है दो दिन में मेरा विवाह है, लेकिन आपको एक दिन पहले ही आना होगा। और गुप्त रूप से आप आइए, राक्षसेन विधि विधिनोद्वह वीर्यशोकाम। तो बलपूर्वक प्रसय, बलपूर्वक इन अन्य राजा महाराजाओं के मध्य में से मुझे ले चलो और मेरा स्वीकार करो हे प्रभु। रुक्मिणी बड़ी कुशल है, बुद्धिमान है। वो लिखती है कि शायद आप सोचोगे कि मैं तो महल में रहूंगी, तो तुमको मुझे अगर ले जाना है तो मैं तुम्हारे घर से, तुम्हारे नगरी से द्वारका ले जाना है, तो मैं जब आऊंगा तो तुम तो घर में रहोगी, महल में रहोगी, और मुझे आते हुए देखेंगे घर वाले और भी राजा महाराजा, तो वहाँ विरोध होगा, कुछ खून खराबी हो सकती है, ऐसे आप सोचते होंगे। लेकिन मेरी एक युक्ति है, मेरा एक विचार है प्रभु। तो वो कहती है कि द मीटिंग पॉइंट, कहाँ हम मिल सकते हैं। बड़ी चालाक है। हाँ, आपको घर में मिलने की आवश्यकता है, मैं समझती हूँ घर में तो आप आके तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हमारे कुल में परिपाटी है, दुल्हन विवाह जिस पुत्री का होना है वो अंबिका के मंदिर में जाती है, कुल देवी की पूजा अर्चना करने हेतु। और फिर तो मैं भी जाऊंगी, कल जाऊंगी मैं, परसों विवाह है एक दिन पहले, तो मैं जब मंदिर से लौटूंगी घर की ओर, जब मैं जा रही हूं उस वक्त आप आ जाना और मुझे ले जाना प्रभु। यस्यांग्रि पंकज रसा रजह स्नपनम महांतो। तो मैं आपको खूब चाहती हूँ क्या, और कोई है नहीं मेरे मन में, और कोई पर्याय है नहीं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने मेरा स्वीकार नहीं किया तो व्रत द्वारा इस शरीर को सुखाकर मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और फिर देखा जाएगा। और किसी भविष्य के जन्मों में आप मेरा स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैंने तो आपका स्वीकार किया हुआ है पति के रूप में, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। तो इसी जन्म में अगर आप स्वीकार करोगे मेरा, तो मेरा अपना जीवन धन्य मानूंगी। ये रुक्मिणी का पत्र है, संदेश है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में, निवेदन है। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेश यदुदेव मयारितः विमृश कर्तुम यच्चात्रो क्रियताम तदनंत। हाँ, ये संदेश मैंने, आपने पूछा था मैं क्या कर सकता हूं, तो अब इस पत्र से स्पष्ट ही है आप क्या कर सकते हो। तो इस पर विचार कीजिए और जो भी करना है कैसे करना होगा फटाफट। इस समय वो बेला निकट आ रही है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कमेंट में कहते हैं, जब इस वैदर्भी के संदेश को यदुनंदन सुने, प्रग्रह्य पानिना पानिम, झट से उस ब्राह्मण के हाथ अपने हाथ में लिए, मतलब हम सम्मत, हाँ हम तैयार हैं, स्वीकृति अगर प्रकट करनी तो हम व्यक्ति का हाथ शेक हैंड कर, वैसे विदेश में ऐसा होता है, हाँ एक हाथ एक हाथ, हमारे कल्चर में दोनों हाथ पकड़ते हैं, दोनों हाथ, हाँ हाँ बात पक्की है क्या कहते, हाँ यस, विदेश में ये भी चलता है थम्स अप। और प्रसन्न हो के प्रसन्न इदम अब्रवित, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यदुनंदन कहे, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रा च न लभे निशी। ऐसी बातें हैं, जैसे रुक्मिणी कह रही थी मुझे तो, मैंने तो लज्जा छोड़ दी, तो यह द्वारकाधीश भी सारी लज्जा को छोड़ के कह रहे हाँ 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 हाँ, अरे ब्राह्मण क्या कहूं, अरे मेरी स्थिति भी तो वैसी ही है। तत्चित्त, मेरा चित्त भी किसमें लगा हुआ है, रुक्मिणी में लगा हुआ, तत्चित्त, जैसे उसने अपने पत्र में लिखा है उसका चित्त मुझ में लगा है, लेकिन मेरी स्थिति तो कुछ भिन्न, मेरी स्थिति वैसी ही है, मेरा चित्त तो रुक्मिणी में ही लगा है। और इतना ही नहीं, निद्राम च न लभे निशी, रात्रि को मुझे नींद भी नहीं आ रही, यहां तो बढ़िया डनलॉप के बेड्स वगैरह है द्वारका में, डनलॉप से भी, हम तो डनलॉप को बढ़िया समझते हैं, लेकिन डनलॉप की ओर तो देख के थूकते हैं, वहां द्वारका में कौन पूछता डनलॉप को, हाँ वहां का मटेरियल तो और भी है, और ही है। तो लेटते तो प्रभु है लेकिन नींद नहीं आती, मैं केवल जो भी दिन में सुना करता हूँ रुक्मिणी के संबंध में, आज कोई महात्मा आए और कभी और कई किसी समय आए कुंडीनपुर से, विदर्भ से, तो वो सुनाते रहते हैं रुक्मिणी की गुण गाथा। और फिर रात्रि के समय उसे नींद भी नहीं आती है। लेकिन मैं जानता हूं वेद अहम रुक्मिणा द्वेषात निवारिता। हा 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 हा, समस्या तो वो रुक्मी है जो मुझसे द्वेष करता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, मैं तैयार हूं। सो विवाह तो परसों ही होना है, मान के समझ के इस बात का ख्याल रखते हुए भगवान दारुक को, दारुक 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 कौन है? चैरियट ड्राइवर, रथ के सारथी है, भगवान के रथ के सारथी दारुक। दारुक को बुलाए, संयुज्यताम रथः आशु, मेरा रथ तैयार करो। तो रथ तैयार है, यस हुजूर, रथ तैयार है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते जिस रथ, जो रथ तैयार है उसमें चार घोड़े रथ खींचेंगे, उनके नाम है, शैव्य नाम का एक घोड़ा है, सुग्रीव मेघ पुष्पक बलाहक, और कौन उनके अलग अलग घोड़ों के अलग अलग रंग भी दिए हैं, कोई कल्पना नहीं है, ये जैसे घटना घटी वैसे ही कितने घोड़े खींच रहे थे और कौन कौन से भिन्न भिन्न वर्णों के रंगों के वो घोड़े थे, उनके नाम कौन कौन से थे, और क्या जानना चाहते हो आप? आरुह्य शंदनम शौरीर द्विजम आरोप्य तूर्ण गई। तो प्रभु बैठे शंदनम उस रथ में, और द्विज उस ब्राह्मण को भी बिठाए, और आनर्ताद एक रात्रेन विदर्भा आगमनम हयै, बड़े तेजी से घोड़े रात भर दौड़ रहे थे, सायंकाल को प्रस्थान किए द्वारका से, अब प्रातःकाल पहुंच गए विदर्भ में, तूफान की तरह से आग ट्रेन चलती है, आग गाड़ी। तो इनका रथ उतने ही गति से जा रहा था और पहुंच भी गया। राजा सकुंडिन पति पुत्र स्नेह वशम गतः शिशुपालाय स्वाम कन्या दास्यम कर्मान्य कारयत। तो राजा कुंडिनपुर के पति भीष्मक पुत्र स्नेह वशम गता, समस्या थी पुत्र से स्नेह, फिर उससे वशीभूत होके तैयार होना पड़ा, मजबूरी है शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए तैयार। जैसे धृतराष्ट्र भी दुर्योधन से जो उनका स्नेह था उससे वशीभूत हो के ऐसे कई सारे कृत्य किया करते थे, जिन कृत्यों से वे स्वयं सहमत नहीं हुआ करते थे, वैसी बात पुत्र स्नेह वशम गता ये सब हो रहा है। कर्माणी सारे कार्य तैयारी चल रही है, पहले तो सारे नगरी को ऐसा साफ सुथरा किए हैं, स्वच्छ किए हैं, समृष्ट संसिक्त मार्ग रथ्या चतुष्पदम, स्वच्छता हुई है और छिड़काव हुआ है जल का, ध्वज पताका तोरणई समलंकृतम, शोभायमान नगरी शोभा बढ़ा रहे हैं। माल्य भरणई अंबर भूषितई और श्रीमद अगुरु नाम का धूप होता है उसका सुगंध फैला हुआ है और स्त्री पुरुष विशेष माला धारण किए हुए हैं, आभरण आभूषण पहने हुए हैं, अंबर भूषित विशेष नए वस्त्र पहने हुए हैं। तो सारे नगर सारे लोग स्त्री पुरुष सब सजे हैं, सज्ज है, तैयार है या तैयारी हो रही है। विप्रांश विधिवत नृप तो विप्राय ब्राह्मण आए हैं भोजयित्वा, ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है भोजन, पहले भोजन खिलाए, उसमें भी क्या होना चाहिए मिष्टान्न होना चाहिए, कौन सा मिष्टान्न, लड्डू होने चाहिए, ऐसी सारी व्यवस्था, ये ऐसी व्यवस्था भी है। और वाचया मास मंगलम और मंगल गान हो रहा है, हाँ मंगल गान भी करो थोड़ा, मंगल
गान पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि।
समादर मंत्र
ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसद्धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदपुनीः मां ॐ सकर्मणः पुण्यः भवन्तु ब्रुवन्तु ॐ पुण्यः मों पुण्यः मों पुण्यः ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वितस्वाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ सकर्मण ऋद्धिं भवन्तु भुवन्तु ॐ हृद्यताम् ॐ हृद्यताम् ॐ हृद्यताम्।
हृदय गौर प्रेमनंदे हरि 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 वो। उस नगरी के लोग तो प्रसन्न थे और आप शिशुपाल भी आ रहा है इसलिए आप दुखी हो। यस तो वाचया मास मंगल तो मंगल गान और सब ब्राह्मणों को हिरण्य रूप्य वासांसी वस्त्र दिए जा रहे हैं। प्रादाधेनुष्य विप्रेभ्यो तो गाय दान दी जा रही ब्राह्मणों को। ये जैसे सारी तैयारियां कुंडीनपुर में हो रही है तो वहां चेदी नाम का जो राज है जहां के दमघोष राजा थे और दमघोष के पुत्र है शिशुपाल तो वहां पर भी मंत्रोच्चारण हो रहा है या दुल्हन की तैयारी हो रही, वहां दूल्हे की तैयारी वहां हो रही, वहां भी मंत्र बोले जा रहे हैं। और अब अलग अलग राजाओं का वह पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। सैन्य परितः कुंडिनम ययोग साथ में कुछ सैन्य भी ला रहे हैं जा रहे विवाह के लिए लेकिन साथ में सेना लेके आ रहे क्योंकि समझते हो सकता है कलह शंकित अगर कृष्ण वहां आए तो सोचते हैं वहां कृष्ण आने की संभावना तो है क्योंकि जानते हैं कि रुक्मिणी तो चाहती वैसे द्वारकाधीश कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है केवल रुक्मी के कारण, रुक्मिणी का भाई रुक्मी के कारण ये विवाह वैसे शिशुपाल के साथ तय हुआ है लेकिन जहां तक तो रुक्मिणी का प्रश्न है वो तो द्वारकाधीश को ही चाहती, इस ये बात प्रसिद्ध थी। तो ये सारे राजा महाराजा, कौन कौन से राजा, जरासंध आ गए, जरासंध हम कल ही मिले थे उनको वैसे बहुत समय बीत चुका है कथा हमने वैसे द्वारका में रहे हैं भगवान रणछोड़, और बलराम जी का विवाह होता है रेवती, रेवती मैया के साथ, रेवती के साथ, वो बड़े भाई है तो इनका विवाह होना चाहिए। तो ये रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी विवाह का जो वर्णन है उसके पहले बड़े संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी बलराम विवाह की चर्चा किए हैं, और फिर अब तो द्वारका में कुछ समय बिताए हैं। तो दंत वक्र भी आ रहे हैं, विदुर रथ आ रहे हैं, शाल्व आ रहे, पौंड्रक आ रहे, पौंड्रक ये सब जरासंध के मित्र मंडली है। तो एक ही माला के मणि सब वहां पहुंच रहे हैं, और सभी ने वैसे संकल्प योत्स्यामः इति निश्चित मानसः, हाँ हाँ युद्ध करना पड़ेगा तो हम तैयार है, हम सब मिलके जुट के युद्ध करेंगे कृष्ण के साथ। श्रुत्वे तद् भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम् कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्याम कलह शंकितः। और बलराम जो दूसरे दिन उठे और लोग भी उठे द्वारका में, तो देखते तो कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण समझ गए हाँ 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 हाँ, वो एक सबसे बड़ी संभावना तो आज के दिन वहां गए होंगे, कुंडीनपुर गए होंगे। तो बलराम को यहां कहा भ्रातृ स्नेह परिप्लुतः, भ्रातृ प्रेम जैसे राम और भरत का प्रेम, या राम और लक्ष्मण ये जो भ्राता उनका प्रेम, वैसे ही कृष्ण बलराम के मध्य का प्रेम, भ्रातृ प्रेम। तो भ्रातृ प्रेम परिप्लुतः, अपने भ्राता श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम, उस प्रेम वश त्वरितः कुंडिनम प्रागात, बलराम स्वयं भी प्रस्थान किए कुंडीनपुर के लिए, लेकिन साथ में उस सेना लेके, वे भी सेना लेके जा रहे। कलह कन्याम कलह शंक, कोई उनको भी शंका दिया झगड़े रगड़े की इस बात संभव है, तो कृष्ण तो अकेले, कृष्ण कृष्णम च एकम गतम, वो तो अकेले गया। तो बलराम कुछ सेना लेके पीछे पीछे से गए और पहुंच भी गए। नागच्छति अरविंदाक्षो नाहं वेद्मि अत्र कारणम्, अब वो दिन आया है, अब कल विवाह होगा, आज के दिन अंबिका माता के पूजन का दिन है, अब मुझे तैयार होके देवी के पूजा के लिए प्रस्थान करना ही होगा। लेकिन कहाँ है अरविंदाक्ष, कहाँ है वो पुंडरीकाक्ष, मेरे प्रभु द्वारकानाथ कहाँ है, ना हम वेदमि अत्र कारणम, इसका कारण तो मैं नहीं समझ सकती, क्यों नहीं आए प्रभु। अपि मयि अवनद्यात्मां दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितं मत्प्राणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः। हो सकता है कुछ अंदाजा लगाने का, कुछ समझने का प्रयास, क्यों नहीं आए होंगे, क्यों नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है उन्होंने मुझ में कुछ बुराई देखी होगी, सुनी होगी मेरे संबंध में, और उन्होंने निश्चय किया होगा नहीं नहीं इस ये अच्छी नहीं है। रुक्मिणी, इसीलिए उन्होंने विचार ही छोड़ दिया होगा मेरा, या मेरा पानी ग्रहण करने का विचार। दुर्भगाय में धाता, कितनी अभागी हूं मैं हे विदाता विधाता, और महेश्वर शंकर कोई भी अनुकूल नहीं है। देवी वा विमुखा गौरी रुद्रानी गिरिजा सती, मेरे पक्ष में तो कोई भी नहीं लग रहा है, कोई भी अनुकूल स्थिति का मैं अनुभव नहीं कर रही हूं। एवं चिंतयति बाला गोविंद ऋतमानसा, न्यमीलयत् कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकला कुले। इस प्रकार चिंता चिंतयति, चिंता इस प्रकार चिंता विचार करने करती हुई ये बाला बालिका रुक्मिणी गोविंद ऋतमानसः, अब केवल अधिक और अधिक गोविंद का स्मरण करती हुई। न्यमीलयत कालज्ञा, आंखें बंद की है लेकिन वैसे आंखें डबडबाई, खूब आंसू तो आंसुओं से भरी भरी हुई आंखें, और चिंतन कर रही है, मन ही मन प्रार्थना कर रही है, कब आएंगे गोविंद, कब आएंगे गोपाल, हे कृष्णा हे गोविंद हे गोपाल, आ जाओ प्रभु, कहाँ हो प्रभु, क्यों नहीं आ रहे हो प्रभु, केवल यही विचार कर रही है, गा भी रही है।
Gopal Nandana Krishna Govinda.
गोविंद गोपाल
कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदना कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदना
कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदना कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदना Gopal Nandlal,
Gopal Nandlal, Gopal Nandlal,
Gopal Nandlal, Gopal Nandlal,
Gopal Nandlal, Gopal Nandlal,
Gopal Nandlal.
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama.
एवं इस प्रकार इस तरह हम लोग सुन रहे थे, जिस भाव का अभी हम कुछ अनुभव कर रहे थे। एवं इस प्रकार वध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविंद आगमनम नृप वाम उरुर्भुजो नेत्रं स्फुरन् प्रिय भाषिणः। गोविंद के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रही थी ये वधु बाला रुक्मिणी तो वो अनुभव करने लगी कि कुछ अच्छे शुभ लक्षण दे। बाम बामे बाय जांघ में बाई भुजा पाया नेत्र स्फुरन फड़कने लगा। तो मन ही मन में समझ उसने सोची, हाँ ये तो शुभ लक्षण है। अच्छा, इतने में कृष्ण विनिर्दृष्टः स एव द्विज सत्तमः, जिसको भेजी थी द्वारका और अब द्वारकाधीश नहीं, जिनको रुक्मिणी की ओर उनको भेजा था वे द्विज सत्तम ब्राह्मण अंतपुरश्चरिम। अंतपुर में रुक्मिणी के निवास स्थान में प्रवेश करती हुई उनको देखी। तो खुशखबरी थी, यस सत्यम वचनम, यदुनंदन तुम्हारा स्वीकार करेंगे। हरी बो। तमागतम समाज्ञाय वैदर्भिरिष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियं न नामसा। तो गुड न्यूज, खुश खबरी लेके आए वे इस ब्राह्मण को देने के लिए कुछ उसको दिखाई नहीं, क्या दे सकती हूं मैं भेंट के रूप में, अपनी प्रसन्नता अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु। तो कुछ समझ नहीं मैं नहीं आ रहा क्या देना चाहिए, क्या दे सकती है। तो कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। तो यह सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जैसा भी हुआ वैसा ही लिखते हैं, उन्होंने केवल नमस्कार ही किया, मन ही मन में आभार मान रही है और नाम सा नमस्कार की, धन्यवाद ब्राह्मण। प्राप्तो श्रुत्वा, तो अब तो उस नगरी में कृष्ण भी है, और राम भी है। और राजा भीष्मक, उन्होंने सोचा कितनी बढ़िया बात है, कितने दूर देश के राजा द्वारकाधीश पधारे हैं और साथ में अपने बड़े भ्राता बलराम को भी लाए हैं, मेरे पुत्री का जो विवाह कल होना है उसमें सम्मिलित होने के लिए, देखने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए ये कृष्ण बलराम आए हैं। स्वागत के लिए गए मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के विप्रों के विधिवत सम पूजयत, पूजा अर्चना किए, अतिथि देवो भव, तो अतिथि आए हैं, मानो देवता आए हैं, वैसे वे आदि देव ही है, केवल देवता ही नहीं, देवों के देव है, आदि देव है। कृष्णमागतम आकर्ण्य विदर्भ पुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलि भी पपुस्तन्मुख पंकजम। सुन तो लीजिए अब क्या हो रहा। कृष्णमागतः, कृष्ण आए हैं, बलराम आ गए हैं, आकर्णी, ये जब बात सुनी, किन्होंने सुनी, विदर्भ पुरवासिना, विदर्भ के राज्य के वासियों ने, नागरिकों ने ये बात जब सुनी, आगत्य, तो वे आए, भागे, दौड़े आए, कुछ तो विवाह के लिए भी आ रहे थे लेकिन कुछ अधिक लोग आए, ये बात सुन के कि कृष्ण बलराम आए हैं, आके क्या किए, नेत्रांजलि भी पुपुस पपुस, अपने आंखों 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 से पी रहे हैं, पान का मुख अंबुजम, भगवान के मुखमंडल सौंदर्य है और आभा है, वो अमृत है, अपने आंखों के प्याले बना के, प्याले भर भर के पी रहे हैं, उस सौंदर्य को पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। ये विदर्भपुर वासी उतने कुशल नहीं होंगे, लेकिन वृंदावन में गोपियां जब देखती है, लेकिन समाज में कभी पास में जाके उनको स्पर्श नहीं करती, तो ऐसी गोपियां भगवान को, सौंदर्य को पीना, मतलब भगवान को वैसे अंदर ले जाती है, ये जो आँखों की खिड़की है ये खोलती है, अंदर ले जाती, खिड़की बंद कर देती है, हृदय प्रांगण में ले जाती, बिठाती वहां कृष्ण को, और वहां मिलन होता है, और अंदर मिल रहे हैं वो कैसे पता चलता है, उन गोपियों का शरीर में रोमांच, और आनंद अश्रु आंखों से, इन कुछ लक्षणों से कोई बता सकता, हाँ हाँ या मिलन हो रहा है, राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण मिलन, तो गोपी इस प्रकार मिलती है भगवान, भगवान के रूप को पीती है, पूरे केवल मुखमंडल का सौंदर्य कोई नहीं, पूरे भगवान को पी लेती, अंदर ले जाती, वहां मिलन होता है। अब प्रभु तो पधार चुके हैं, तो रुक्मिणी तैयार हो जाती है पूजा के लिए, देवी पूजा के लिए, पदभ्याम विनिर्ययो दृष्टुम भवान्यापाद पल्लवम, पैदल ही जा रही है और वह अकेली नहीं है, वैसे कई सारी सहेलियां साथ में हैं, सार्धम सखी भी परिवारितः, कई सारी सखिया और राज भटई और राजा के जो विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण करने वाले और कई वाद्य बजाने, मृदंग शंख पणवा तूर्य भैरियश्च, इसमें से कोई बैठा है या ये सब वाद्य बजाए जा रहे हैं। रुक्मिणी जब तबला वाला तो आ गया, जिसको आना नहीं चाहिए तो तबला लेके रास्ते में कोई जाता था तो बड़ा सुंदर वर्णन है, लंबा तो नहीं है लेकिन देखिए कैसे सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तीन व्यक्तियों के चरणों की बात कर रहे हैं। पदभ्याम विनिर्ययो, रुक्मिणी तो अपने पैदल ही जा रही है द्रष्टुम, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? पाद पल्लवम, चरणों को देखेगी या चरणों की ओर जा रही है। किनके चरणों की ओर जा रही? भवान्यः, भवानी अंबिका के चरणों की ओर चलती हुई, अपने चरणों से चलती हुई जा रही है। किंतु साचा अनुधायति सम्यक मुकुंद चरणाम्बुजम, उसका सारा ध्यान तो भगवान के चरणों की ओर है। चल के जा रही है, अंबिका के चरणों की ओर जा रही है, सारा ध्यान उसका गोविंद के चरणों की ओर है। जय राधे, जय रुक्मिणी मैया के, जय। गायन्तः स्तुवन्तः, गायका वाद्यवादकः, साथ में विधिपूर्वक पूजा अर्चना। रुक्मिणी राजपुत्री है, सारी व्यवस्था है और इतना बड़ा विवाह महोत्सव संपन्न हो रहा है। आसाद्य देवी सदनम, तो पहुंच गई देवी सदनम, देवी के स्थान पर। उपस्प्रश्य सुची शांतः, तो आचमन करके प्रवेश अंबिका अंतिकम, अंबिका देवी के अधिक निकट पहुंच जाती है। नमस्से, नमस्कार कर रही है। त्वाम अंबिके, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तद अनुमोदिताम, मुझे पति के रूप में प्राप्त हो कृष्ण, ऐसा वरदान दीजिए हे अंबिका माता, आपके अनुमोदन की अभिलाषी हूं मैं रुक्मिणी। पतिं मे कुरुते नमः, नंद नंद गोपसुतम देवी, वह गोपी अभी वृंदावन में कात्यायनी की पूजा कर रही थी, एक पूरे एक मास भर पूजा की, मार्गशीर्ष महीने में जाती थी जमुना में हर प्रातः काल ठंडी के, वैसे मार्गशीर्ष महीने में, कौन सा महीना चल रहा है अभी, मार्गशीर्ष, अब शायद कुछ दिनों में कब पूर्णिमा, कब है पूर्णिमा, रविवार या है चली, ओके मार्गशीर्ष संपला, मार्गशीर्ष कार्तिक के बाद का मास, मार्गशीर्ष महीने में तो स्नान करती थी जमुना में और कात्यायनी की पूजा और प्रार्थना, एक ही प्रार्थना, नंद गोप सुतम देवी पतिम मई कुरुते नमः, पुनः पुनः हम नमस्कार करते हैं देवी तुम्हारे चरणों में हमारी वंदना स्वीकार करो। और नंद गोप सुतम, नंद गोप नंद महाराज, उनके सुतम उनके पुत्र कृष्ण, पतिम मई कुरुते पति के रूप में हमें दीजिए, ये जैसी गोपियों की प्रार्थना वहाँ वृंदावन में, रुक्मिणी की वैसी ही प्रार्थना कुंडीनपुर में हो रही है। मुनि व्रत अथ त्यक्त्वा निष्काम अंबिका गृहात्, तो पूजा अर्चना अब समापन समाप्त हुई, तो पुनः बाहर आ रही है अंबिका रुक्मिणी। कैसी है रुक्मिणी? देव मायामिव वीर मोहिनीम, अति सुंदर, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा, अति सुंदर कहना तो कुछ ज्यादा तो कहा नहीं, अति सुंदर देव माया, उसका सौंदर्य कुछ मानो भगवान ने स्वयं, देवताओं ने स्वयं रचना की है उस सौंदर्य की। वीरों को भी मोहित करने वाली वो रुक्मिणी सुमध्यमाम, और कमर सुमध्यमाम सुंदर कमर, पतली कमर, कुंडल मंडितानाम, और कुंडल है कानों में, कुंडल है रुक्मिणी के, और मंडिता उन कुंडल से मंडित है उनका आनन, उनके कुंडल शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके मुख मंडल की कुंडल की कुछ चमक झलक कुछ आभा रुक्मिणी के चेहरे पर भी गिर रही है, उसे अधिक शोभायमान उसका मुखमंडल। श्यामाम श्याम श्यामाम श्याम वर्ण की, नितंब नितंबार्पित रत्न मेखलाम, विशाल नितंब वाली कमर में करधनी पहनी हुई, व्यंजस्तनी कुंतल शंकितेक्षनाम, और कुछ चेहरे पर कुंतल बाल भी है, पूरा चेहरा खुला नहीं है कुछ ढका भी है, तो हटा हटा के कभी कभी देखती है तिरछी नजर से राजाओं की ओर। नहीं, इस भीड़ में कृष्ण का अभी आने का मीटिंग पॉइंट आ गया ना, मिलने का उस समय और स्थान भी जैसे निर्धारित हुआ था उस पत्र में, तो यही कई होने चाहिए। और जब रुक्मिणी जा रही है अपने घर, तो पता चला शहर में कि रुक्मिणी अब अंबिका के पूजन के उपरांत अब लौटेगी अपने महल की ओर, तो सारे आए हुए राजा उन्होंने भीड़ की, दोनों तरफ वो खड़े हैं, कोई जमीन पर खड़े है, कोई घोड़े पर सवार है, कुछ हाथी पर बैठे, कुछ रथों में विराजमान है, खचा खच भरे हैं रुक्मिणी को देखने के लिए। उसके सौंदर्य के बारे में तो खूब सुना था, तो वह सुचिस्मिता पवित्र मुस्कान वाली बिंब फला अधर द्युति, और बिंब नाम का एक फल, लाल लाल फल होता है वृंदावन में मिलता है, तो उस प्रकार की लालिमा जिनके जिसके आधर पर है, पदा चलंती कलहंस गामिनीम, जब चल रही है तो मानो कोई हंस, हंस की चाल चलती हुई। सिंजल कला नुपुर धाम शोभिना, और पैरों में रुंझुन नुपुरों की आवाज। विलोक्य भीरा मुहुहु समागतः, ये सारा सौंदर्य जो का वर्णन हो रहा, सब देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। असंख्य राजा महाराजा प्रतीक्षा में है। और वीर मोहिनी, जैसे लिखा था ने सुना, वीरों की मोहित करने वाली। अब इतने वो मुग्ध है रुक्मिणी के सौंदर्य से, वो शरीर को अपना खुद सुध बुध खो बैठे, और उनको इसका इस बात का पता नहीं चला कि वो हाथी के पीठ पर बैठे हैं। और देखते ही रहे तो सुखदेव गोस्वामी लिख रहे कि वो कई सारे तो गिरने लगे हुए। उज्जित अस्त्र, उनके हाथों से तलवार ढाल सर्फ गिर रही है, वो देख ही रहे। ऐसे बैठे तो घोड़ा हिल गया तो 10-20-50 राजा ऐसे गिर रहे। जैसे वो जाती रही वहां वहां के राजा गिर रहे। अब आगे वाले भी तैयार है गिरने के लिए। ऐसी शोभा सौंदर्य वाली रुक्मिणी। ताम राज कन्याम रथम आरुरक रुक्षांतिम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षण। इतने में उसने देखा, एक रथ देखा। रथ क्या, पहले तो झंडा ही देखा, ध्वजा पताका। कृष्ण का रथ, हाँ यही कृष्ण का रथ होना चाहिए। हाँ कृष्ण आ रहे, मेरी ओर आ रहे। देखो वही ध्वज जिसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह है। तो बाकी राजा महाराजा तो सब सुध बुध खो बैठे हैं। वो कृष्ण को ही भूल गए, या कृष्ण इस वक्त भी आ सकते हैं इसका भी स्मरण नहीं रहा उनको। प्रभु ने उस परिस्थिति का भी लाभ उठाया, और किसी का ध्यान नहीं, कोई सोच भी नहीं रहा है, केवल सभी के ध्यान का एक ही केंद्र रुक्मिणी। इधर उधर कोई देखता ही नहीं। राजन्य चक्रम परिभूय माधवः, माधव आ गए। और पहली बार अब रुक्मिणी माधव श्री कृष्ण को देख रही है। प्रभु ने अपने रथ को और आगे बढ़ाया है, और रुक्मिणी भी अब सीधी नहीं जाती हुई, तिरछा रास्ता करके उस रथ की ओर दौड़ रही है। ए वहां कहा जाए सहेलिया, ए दिस वे, इधर से जान, रास्ता इधर है। लेकिन उसका रास्ता तो उसी ओर था, कृष्ण की ओर ले जाने वाला रास्ता। कृष्ण को लक्ष्य बनाई थी, अधिक निकट गई उत्कंठित तो वो थी ही, सब पहले तो सब प्री प्लान्ड था, तो ऐसा सब होना था, तो वो भी ऊपर रथ में चढ़ने के लिए तैयार, और प्रभु भी इसकी सहायता करते हैं। और जब रुक्मिणी रथ में है तो भगवान रथ को इतने तेजी से वहां दौड़ाए तब जब रुक्मिणी वहां नहीं है, कोई रथ आया और कुछ ही क्षणों में रथ ने प्रस्थान भी किया, तब बाह्य ज्ञान आया इन राजाओं का, तब पता चला शायद कृष्ण के अलावा और कौन चाल चल सकता है इस प्रकार। ययो रामपुरो गमै शनै श्रगाल मध्यमादिव भागध्वरिः। भगवान सिंह की तरह आए और सारे सियारों के मध्य में जो थी ये रुक्मिणी, इस शेर ने इसको उठा लिया, अपना भाग अपना हक है ऐसा समझ के उठा के प्रस्थान किए। तो राजा फिर भागे, फिर तैयार हो गए और दौड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं भगवान के रथ का। लेकिन बलराम भी है अंग रक्षक, भगवान के रथ के रक्षक, और छोटी सी सेना भी है, तो सारी एक्शन प्रारंभ होती है। युद्ध भूमि, युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान को कौन परास्त कर सकता है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री, जहां योगेश्वर है और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी योद्धा है, वहां क्या होगा, तत्र श्री विजयो, वहां विजय होता है। यह योगेश्वर है, योगेश्वर की जीत ही होती है, या योगेश्वर जिनके पक्ष में है उनकी भी जीत होती है। विजयस्तु पांडुपुत्रा नाम ईशाम पक्षे जनार्दन, जिनके पक्ष में जनार्दन है उनका, उनकी जीत, उनका विजय। तो भगवान की विजय निश्चित थी और यह विजय हो भी रही है। शिशुपालम ये देखा जा सकता है, अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। शिशुपालम समभ्येत्य ऋतदारम इवातुरम, आतुर तो था जिस बनने वाली पत्नी को प्राप्त करने, लेकिन अब वो हताश उदास नष्ट त्विषम, कोई काला चेहरा, सूख गया है मुख जिसका, ऐसा शिशुपाल दिखाई दे रहा है। भो भो पुरुष शार्दूल दौ दौर, उदासीनता को छोड़ दो, इसको सलाह दी जा रही है शिशुपाल को। जरासंध करे ये श्रेष्ठ पुरुष, शिशुपाल कौन है, ये श्रेष्ठ पुरुष, उदासीनता को त्याग दो, कुछ हताश हत उत्साही हुए इस शिशुपाल को। अब राजा महाराजा उसमें बड़े है ये जरासंध, कह रहे कहते मेरा जहां तक अनुभव है मैं तो 17 बार युद्ध किया यू नो और 17 बार पराजित होना हो गया, मैं मुझे अभ्यास हो गया पराजित होने का, अपने अनुभव की बात बता। लेकिन वो कहता है कि लेकिन वैसे 18वीं बार मैंने जीत लिया, हाँ 18th time तो उस वक्त भगवान तो युद्ध करने के मूड में थे नहीं इसीलिए, लेकिन वो मान रहा है कि हाँ मैंने जीत लिया, 18वीं बार मेरी जीत हुई। तो अभी तुम्हारी तो एक ही बार हुई और 16 बार की तैयारी रखो और कहते तथापि अहम न सोचामि न प्रश्यामि, लेकिन मैं कभी शोक नहीं किया शोक नहीं किया। ये सब तो काल और भाग्य का प्रभाव से ये सब होता रहता है, ऐसे समझा रहे। तो अधुनापि वयम सर्वे वीर यूथप यूथपा, वैसे हम सारे पराजित हुए यदुओं के द्वारा, अभी सच बात कह रहा है जरासंध। कृष्ण पालितई, कृष्ण उनका पालन करते हैं यदुओं का, यदुओं की सेना के पालक है, रक्षक है साक्षात कृष्ण, इसीलिए हमारा पराजय हुआ, ऐसा जरासंध कह रहे। लेकिन अभी तो रिपु या शत्रु के काल तो उनके अनुरूप या अनुकूल था इसलिए उनकी जीत हुई, लेकिन भविष्य में तदा वयम विजयश्यामो यदा काल प्रदक्षिणा, हमारे दहने बगल में हमारे फेवर में जब समय आएगा तो हम लोग भी जीतेंगे। एवं प्रबोधितो मित्रई, ऐसे जब बोध किया उत्साहवर्धन की कुछ बातें कही शिशुपाल को, और वैसे भी क्या कहा जा रहा है हमको वैसे खुशियां मनानी चाहिए इसलिए भी कि हम लोग बाल बाल बचे, हाँ वैसे हम जीवित तो है भाई हम मरे तो नहीं जान बच गई तो चलो चलते हैं लड्डू तो खाए शादी नहीं हुई ययु स्वम स्वम पुरम नृपः, तो अपने अपने नगरों में ये सारे राजे महाराजे लौट गए अपने पराजय मान के स्वीकार करके। लेकिन अब तक रुक्मी जो है, रुक्मी संकल्प कर रहा है, मेरा संकल्प है कहता ओ हत्वा मैं अभी जा रहा, मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं कृष्ण को नहीं मारूंगा हत्या नहीं करूंगा और रुक्मिणी को वापस नहीं ले आऊंगा या लाए बिना मैं वैसे कुंडिनपुर मुझे लौटना ही नहीं है, कुंडिनपुर में मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा तब तक जब तक मैं कृष्ण की हत्या नहीं करता हूं और रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता हूं। सत्यमी तद ब्रवीमी वह, ये सत्य वचन मैं कह रहा हूं इसके आप सभी साक्षी हो, जो भी उपस्थित उनसे कह रहा। तो अब दोनों में युद्ध होता है, कृष्ण और बलराम भी है, ये दोनों एक पक्ष में और रुक्मी और उनकी मंडली तो पुनः इस डिंग डिंग मारने वाले का डिंग, ये रुक्मी भगवान ने उसको पकड़ लिया और अपने अस्त्रों से उसको कुछ छित्वा, कुछ टुकड़े ही करने वाले थे तलवार से, तलवार निकाली है और कृष्ण के हाथ में तलवार। तो रुक्मिणी तो वही है, रुक्मिणी देख रही है अपने भ्राता की क्या स्थिति, तो भय अविवर बहुत घबरा गई रुक्मिणी। पादयोर भर तुम अपने पति देव के चरणों में पतित्वा गिर के करुणम, बड़ी करुणा से उवाच सती रुक्मिणी ने ये वचन कहे, योगेश्वर हे देव देव जगतपते कल्याण महाभुज हंतुम नारहसी, मारिए नहीं, मारिए मत, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भ्रातरम में तो मेरा भाई है, इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। इस करुणा भरी वचन निवेदन को प्रभु सुने, हाँ इसकी हत्या तो नहीं करेंगे, ये तो संकल्प प्रभु ने लिया, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। तो उसको बांध दिए, दुपट्टे से बांध दिए और जिस तलवार से उसको गला और सब हाथ पैर सब काटने वाले थे उसी तलवार से हजामत किए, उसके मुंडन किया, ऐसी ऐसी मूछ थी उसकी, इधर भी उसकी सफाई की। उसको विरूप बना दिया। बलराम जी ये सब दृश्य देख रहे थे, नहीं 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 ये उचित नहीं है, बलराम आते नहीं ये उचित नहीं है। हतः किम हन्यते पुनः, अरे ये तो पहले मरा हुआ है, क्यों मार रहे हो इसको। बलराम कहे, चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महत्पुरम। तो अब अहत्वा तो कृष्ण को नहीं मार सका, हत्या नहीं कर सका, अपने बहन को वापस लेके नहीं आ सका, तो इस रुक्मी ने एक शहर की स्थापना की भोजकट नाम की और वही रहने लगा। भगवान भीष्म कसुतामेव निर्जित्य भू पीपान पुरम आनीय। तो सब राजा महाराजाओं का राजय करके प्रभु तो द्वारका लौट आए। लो द्वारकाधीश की जाय। और अब विधिवत उपये में और विधि पूर्वक अब विवाह संपन्न होगा। रुक्मिणी विवाह का संक्षिप्त वर्णन यह सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तदा महोत्सवो नृणाम यदपुर्याम गृहे गृहे। तो सब स्थानों पर अब महोत्सव की तैयारी, घर घर में हर नागरिक तैयार हो रहा है विवाह यज्ञ के लिए। किसका विवाह होगा? प्रभु का विवाह, द्वारकाधीश का विवाह, रुक्मिणी कोई साधारण, श्लोक कहते हैं रुक्मिणी महाराष्ट्रियन रुक्मिणी, तो गुजरात के लोग कहते हैं कृष्णा इज गुजराती, कृष्णा गुजरात के हैं और रुक्मिणी महाराष्ट्र की है। तो भगवान तो कुंडीनपुर या अमरावती के पास है, तो अमरावती के पास के किसी स्त्री से विवाह किया तो कोई सोच सकती कि पुणे से भी किसी को स्वीकार कर ही लेंगे, वहां से तो और बड़ा नगर है ये। रुक्मिणी कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ये शाश्वत और नित्य पार्षदा भारिया है प्रभु की। लीला का प्रदर्शन दर्शन करा रहे हैं, ये सदा के लिए अपनी ही रुक्मिणी है। भगवान के अपने धाम में गोलोक धाम में भी द्वारका है, वह वृंदावन है, वह मथुरा है, वह द्वारका है। द्वारका में प्रभु गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते, गृहस्थ बनते हैं। अब एक दो दिनों में हम लोग देखेंगे, नारद मुनि ने देखा हुआ दृश्य, घर घर जाते हैं। कितने घर है? 16,108 घरों में जाएंगे नारद मुनि। वो स्त्रियां भी कोई साधारण इस संसार की स्त्रियां नहीं थी। नरा नार्यस्य मुदितः प्रमृष्टमणिकुण्डलः, तो सारे सजधज के तयास, सर्वोत्तम वस्त्र पहन रहे हैं, अलग अलग मणि कुंडल धारण कर रहे हैं और विवाह के समय देने वाले भेंट उपहार लेके जा रहे हैं। वरयोश्चित्रवाससौ, और वर और वधु ने उनके वस्त्र की तो क्या वर्णन करें, जैसे सर्वोत्तम वस्त्र पहने जाते हैं विवाह के दिन, जब हमारे वर एक दिन का राजा बनते हैं और जीवन भर का गुलाम। घोड़े पर भी बैठता है, घोड़े पर बैठ राजा। लेकिन द्वारकाधीश उस दिन भी राजा थे और राजा ही रहेंगे, उस राजा की नकल नहीं की जा सकती। और द्वारका को भी सजाया है, जो तैयारी विवाह की तैयारी तो कुंडीनपुर में हो रही थी, तो कुंडीनपुर को जैसे सजाया था उससे भी अधिक बड़ी व्यवस्था, सजावट, श्रृंगार और अलंकृत किया था द्वारकापुरी को। सिक्त मार्ग और हाथी छिड़का रहे हैं वहां जल, हाथी सूंड से जल लेते हैं, सुगंधित जल, और ऐसे स्प्रिंकलिंग हो रहा है द्वारका के मार्गों पर है। गजई का गजई हाथियों द्वारा, और पेड़ है केले के पेड़ और कई सारे जैसे ये भी है। जब कभी आवश्यकता होती है हम लोग सजाते हैं है? सारा सारा निसर्ग नैसर्गिक वातावरण। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानौ राजकन्याश्च बुभुर्भृशौ विस्मिताः। और जितने भी लोग आए हैं वैसे विवाह के लिए सब आपस में खूब चर्चा कर रहे हैं। अभी ताजी खबर, ताजी ताजी खबर, इस रुक्मिणी को हरण करके लाए। रुक्मिणी हरण की लीला सबके मुख पर, टॉक ऑफ द टाउन, सारे शहर भर में या उपस्थित सारे वहां के मेहमान, द्वारका के निवासी, यदुवंशज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय बन चुका है। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदा पुरौकसाम। महामोदा, आमोद प्रमोद, बड़ी प्रसन्नता, सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। रुक्मिण्या रमयो उपेतम, दोनों का अब सम्मिलन होगा। रुक्मिणी कैसी रुक्मिणी? रमया लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी, और कृष्णम श्रिया पति ही पतिम, और कृष्ण कैसे जो लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, और लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी। उपेतम संयुक्त, इन दोनों का मिलन। विवाह यज्ञ संपन्न हो रहा है तो नर नारिया बड़ी ही प्रसन्न है। ये पहला विवाह है, और सात विवाह भी होंगे। एक एक और सात कितने हो गए? फिर आठ हो गए, और फिर 16,100 रानियों के साथ एक समय विवाह। पिताई गौर प्रेम नंदे हरी हरी।